ओम शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए जीवन भर जो पुरुषार्थ किया कराया उसी का सार अंतिम क्षणों में ये तीन शब्दों में हम सबको बताया। वास्तव में हमें इन्हीं तीन शब्दों पर फोकस करना चाहिए, उसी पर केंद्रित रहकर अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान के ज्ञान का सार सत्व कहो, ब्रह्मा बाबा ने अपने आप में जो धारण किया वो यही है। निराकारी हम जब से बाबा के बने हैं प्रथम दिन से ही ये स्थिति पाने के अभ्यासी हैं। बाबा आए ही है हम साकारी शरीरधारियों को आकारी और निराकारी बनाने। अक्सर मुरलियों में हम सुनते भी रहे हैं कि बाप ने साकार का आधार लिया, आपको निराकार बनाने के लिए बाबा आवाज में आए, हमें आवाज से परे ले जाने के लिए। यही वो प्रथम पाठ था जिससे हमारे जीवन का परिवर्तन हुआ। कहां खुद को देह समझते थे, इंद्रिय रसों में डूबे हुए थे, देहभान में जीवन जीते थे, देहधारियों को ही याद करते रहते थे, कभी हमारी बुद्धि इस देह से ऊपर उठी ही नहीं। इसलिए ज्ञान से पहले का जीवन अगर हम देखें तो हमें कौन से विचार आते रहते थे, अक्सर कौन सी बातें हम सोचते रहते थे। यही देह और देह संबंध और इस भौतिक जगत की बातें ही हम सोचते रहते हैं। जैसे ही बाबा ने ये मूल सत्य बताया कि जो देखने में आ रहा है वो शरीर आप नहीं हैं, आप इस शरीर से अलग ज्योति बिंदु हैं, चैतन्य शक्ति हैं। आत्मा देह द्वारा इस दुनिया के संपर्क में आती है ना, आत्मा और दुनिया के बीच शरीर ही वो माध्यम और साधन बनता है संपर्क में आने के लिए। और जन्म जन्मांतर से, बल्कि पूरे ड्रामा में, जब से हम इस सृष्टि पर आए, देह द्वारा कर्म करते हैं हर क्षण, और कर्म करते करते हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और देह से अटैच हो जाते हैं, देहभान में आ जाते हैं, खुद को ही देह समझने लगे। और यही वो द्वार है खुद को देह समझने लगना, देहभान में आ जाना। जब खुद को देह समझते हैं तो नेचुरली इंद्रियों के रसों में चले जाते हैं, देखने का रस, सुनने का रस, खाने का रस, बोलने का रस, स्पर्श करने का रस, ये इंद्रिय रसों में चले जाते और इसका कोई अंत नहीं। इसलिए यज्ञ के आदि काल से बाबा यही अभ्यास कराते रहते हैं, तुम इससे अलग हो। ये बार बार महसूस करना है कि मैं इनसे अलग हूँ। दादियां सुनाती है कि शुरू से बाबा ने ये फाउंडेशन डाला देहभान से न्यारा रहने का। हम यज्ञ में रहते थे, संगठन में रहते थे, जैसे अभी हम सब रहते हैं, स्नान करते थे, कोई बाथरूम का दरवाजा खटखटाते थे, वे जल्दी करो, कब निकलेंगे बाथरूम से, तो कहते हम इतने डिटैच रहते थे, जो हम जवाब देते थे, वो पूछते थे बाथरूम से कब निकलोगे, हम कहते थे जब शरीर छूटेगा तब निकलेंगे। मन इतना देहभान से न्यारे आत्मभान का अभ्यास करते थे, क्योंकि सारी अज्ञानता कहो, विस्मृति कहो, माया कहो, नेगेटिविटी कहो, इसी से शुरू होते हैं। हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करना है, हर क्षण शरीर भान से न्यारा भी रहना है। ये एक बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि हर क्षण कर्म भी करना है, शरीर द्वारा ही करेंगे, पर हर क्षण इस अनुभूति में भी मुझे रहना है कि मैं इससे अलग हूं। शरीर को चलाने के लिए रोज खाना भी है, परंतु इंद्रिय स्वादेंद्रिय के आकर्षण में भी नहीं आना। ऐसे भी नहीं है देह को भूलना है, देहभान से न्यारा रहना है तो खाना ही नहीं है, नहीं। इसलिए बाबा ने कि खाते हुए भी जीव के स्वाद के रस में न चले जाएं, इसलिए देखो बाबा ने दो तीन धारणाएं भी हम बच्चों को करवाई कि शुद्ध सात्विक शाकाहारी पवित्र भोजन बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, क्योंकि अगर स्वाद में चले गए तो बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे। तो बाबा ने इसलिए अन्न शुद्धि का नियम दिया, हर नियम मर्यादा का योग की स्थिति से संबंध है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि हर धर्म संप्रदाय के अपने नियम है, इस प्रकार से हमारे यहाँ ये नियम है, ऐसा नहीं है। पर जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आत्मा आप देखो द्वापर युग में जैसे ही देहभान में आई, देह आकर्षण उत्पन्न हुए, विकार उत्पन्न हुए, अपवित्रता आई, सुख शांति गई, आत्मा को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ओरिजिनली हम आत्माएं सत्य हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। इसलिए तुरंत भगवान की याद आने लगी, तुरंत परमात्मा को याद किया, भक्ति मार्ग शुरू हुआ। क्योंकि आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी में, अपने असली गुणों में ही कंफर्टेबल रहती। जब वो अपनी ओरिजिनलिटी से विपरीत वृत्ति प्रवृत्ति में जाती है तो वो बेचैन होती है। भय चिंता शुरू होते हैं। इसलिए ये हमें पक्का हो जाए कि ओरिजिनली हम शुद्ध हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं, चैतन्य हैं, ज्योति हैं, शक्ति हैं। इसलिए देहभान में शांति नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। भक्ति में इस राज को न समझने के कारण विश्व कितना वो समझ गए कि ये दैहिक रस है, विषय वासना है, और इसलिए वो भगवान की भक्ति करने लगे। प्राचीन भक्त जो है वो तो आत्म शुद्धि के लिए ही भगवान को याद करते थे। जो ऋग्वेद की रचना हुई वो समय में वो बताते हैं कि कोई अभाव नहीं था, सर्व प्राप्ति थी, एक ग्रेटिट्यूड के लिए, भगवान का उपकार मानने के लिए ये स्तुति प्रार्थना मंत्र शुरू हुए। माना ओरिजिनल भक्ति प्रथम परमात्मा की मेहरबानी का शुक्रिया मानने और उसके बाद आत्म शुद्धि और परमात्मा मिलन की, जो आत्मा को एक अंतरतम से जो इच्छा रही उसके कारण भक्ति। ये तो आजकल अल्पकाल की प्राप्तियां, इच्छा पूर्ति के लिए भक्ति करने लगे हैं। पहले तो आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इतनी साधना करते थे। ज्ञान नहीं था, सत्य नहीं जानते थे, पर आत्माएं शुद्ध, अभी अभी रजो प्रधान रजो स्थिति में आई हुई, तो सत्य उनको समझ में आता था। हम बाबा के बच्चे, हमें तो संपूर्ण सत्य ज्ञान है, पूरा आदि मध्य अंत हम जानते हैं। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं हमारा भी शुद्ध ध्येय यही होना चाहिए कि हम संपूर्ण आत्मभिमानी बने, संपूर्ण परमात्मा अभिमानी बने। ये भी आजकल अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए योग का प्रयोग करने लगे हैं। योग इसके लिए नहीं है, आजकल हम ये सब करने लगे हैं। चलो भाई, दुनिया पूरा ज्ञान नहीं उठाती है तो हम इस रीति से उनको ज्ञान में लाते हैं, पर जो निश्चय बुद्धि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारा पुरुषार्थ तो मूल लक्ष्य से होना चाहिए। कोई तबीयत के लिए योग कर रहा है, कोई परिवार में शांति के लिए कर रहा है, कोई नौकरी के लिए कर रहा है, कोई विघ्न दूर करने, इसके लिए योग थोड़ी है। हम सब तो जानते हैं, बाबा ने कहा है कि हिसाब किताब अनुसार बातें तो आएंगी। हमें दवा करनी है, दुआ करनी है और याद में रहना है। पर मेयरली योग इसी के लिए नहीं है। हम ज्ञान और योग कर रहे हैं संपूर्ण आत्म शुद्धि के लिए और बाबा से पूर्ण प्राप्ति के लिए, और वो फाउंडेशन की साधना उसमें है कि मुझे हर क्षण अपने आप को देहभान से न्यारा करते रहना है। उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने देह का दमन शुरू किया, इंद्रियों को कष्ट देना शुरू किया, क्योंकि सत्य तो समझ गए ना कि इंद्रिय आकर्षण में नहीं आना है। इसलिए आत्मा का ज्ञान नहीं था कि मैं ही आत्मा हूं और इससे अलग हूं, ये ज्ञान नहीं था। तो देखने में तो शरीर और कर्मेंद्रियां आती है, तो उनको कष्ट देके भी देखो, इंद्रिय जीत, माया जीत, देहभान जीत बनने की मेहनत करते रहे। हम बाबा के बच्चे, हम भाग्यशाली, हमें भगवान का संपूर्ण सत्य ज्ञान प्राप्त है। बाबा की ये सबसे बड़ी कृपा है हम बच्चों पर। हमें और कुछ थोड़ी बाबा से मांगना है या कहना है। भगवान मिला, सत्य ज्ञान मिला, हर विधि बाबा ने हमें बता दी, हमें तो बस उस अनुसार करते जाना है। इसलिए जो भी नियम, मर्यादाएं, धारणाएं, विधि रीति बाबा ने बताई है, वो स्थिति बनाने से कनेक्टेड है, ऐसे ही नियम नहीं। क्योंकि जितना स्वाद में जाएंगे बॉडी कॉन्शियस बने, जितना फैशन करेंगे बॉडी कॉन्शियस बने। ये सारी चीजें देहभान में लाने वाली, बहिर्मुख करने वाली। इसलिए लक्ष्य देह में रहते हुए देहभान से न्यारा रहने का है, तो वो मूल लक्ष्य सदा हमें याद रहना चाहिए। इसके लिए बाबा ने ये कहा पॉजिटिवली कि बाबा को भोग लगा कर खाओ, बाबा की याद में भोजन करो। ये सब क्यों बाबा ने सिखाया? ताकि भोजन का एक अट्रैक्शन खत्म हो जाए। एक क्षण भी बाबा को याद कर, बाबा को ऑफर कर भोजन करते हैं, तो वो एक वो क्षण ही डिटैच कर देता है, तो वो अट्रैक्शन कम हो जाता है। ताकि जो अंदर खाऊं खाऊं होता रहता है वो खत्म हो जाता है। कि शरीर को चलाने के लिए, बाबा कहते हैं ना कि जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना। क्योंकि लक्ष्य देह में रहते, दैहिक दुनिया में रहते, देहधारियों के संबंध में रहते, दैहिक प्रवृत्ति करते हुए आत्मभिमानी बनता है, निराकारी बनता है। तो प्रथम तो खुद के ही नाम रूप का आकर्षण भान खत्म करना, मैंने मुझे शरीर में रहते शरीर में अलग रहना, ये बार बार अपने को डिटैच करते रहना। बताते हैं ना कि रावण की लंका में, लंका की अशोक वाटिका में, रावण की राक्षसी सेना के बीच वो एक राम की याद में रही। ये हम बच्चों का यादगार है और ये वो शक्ति है कि कोई कुछ कर नहीं सका, टच भी नहीं कर सका। तो ये बहुत फाउंडेशन का अभ्यास है। क्यों हम सिंपल लाइफ जीते हैं? हेल्प मिलती है, सोल कॉन्शियस बनने में हेल्प मिलते, अन्न संग पहरवाइश बांचन, इन सब का हमारी मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम इन धारणाओं में रहते हैं, संग कैसा करना, वस्त्र कैसे पहनना, अन्न कैसे खाना, कहाँ कहाँ, क्योंकि जैसे जैसे स्थानों पर जाएंगे घूमेंगे वहां का वायुमंडल का असर, इसलिए हम बिना मतलब कहीं नहीं भटकते हैं। पर अल्टीमेट चीज कई बार क्या करते हैं हम, नियम के मर्यादा के धारणा के लकीर के फकीर बन जाते हैं, पर मूल चीज आत्मभिमानी बनना वो रह जाता है। जैसे वो देह दमन द्वारा देह भान से डिटैच होते हैं पर आत्मभिमानी नहीं बनते, देखो आप। इसलिए सिद्धि आती है पर संस्कार शुद्धि नहीं होते, विकार खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि हठ दमन से देहभान से अलग होते हैं पर जब तक है ना, बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा मूल अभ्यास उठते बैठते चलते फिरते हर किसी को देखते, सुनने में बड़ी सिंपल बातें हैं, आत्मस्मृति में रहना, आत्मदृष्टि से देखना, आत्मधर्म में स्थित होकर कर्म करना, ये प्रथम लेसन की बातें हैं, पर यही अंतिम लेसन है। और जिनों का ये अभ्यास कच्चा रह जाता है उनकी शुद्ध दृष्टि वृत्ति नहीं होती। बल ब्रह्मचर्य पालन करेंगे पर बाबा कहते हैं ना, दृष्टि वृत्ति की शुद्धि, फिर विकार की उत्पत्ति ना हो, मनसा शुद्धि वो नहीं होती है, क्योंकि आत्मभिमानीता की साधना शक्तिशाली नहीं, हमने उस फाउंडेशन को पक्का नहीं किया। और बाबा कई अव्यक्त वाणियों में हम बच्चों को कहते रहे हैं कि ये साधारण स्वरूप छिप जाए, और तुम्हारा जगमगाता ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। अब वो तभी हो सकता है जब मैं स्वयं जितना ज्यादा इस ज्योति स्वरूप मेरे अपने वास्तविक स्वरूप के कॉन्शियसनेस में रहूंगी, तो मेरे चेहरे से नैनों से वो ज्योति स्वरूप अनुभव होगा। हमारे शरीर का कोई आकर्षण कोई प्रभाव नहीं बीच में आएगा। अपने आप हम उस स्टेज में होंगे तो जो हमें मिलेंगे देखेंगे वो भी अंतर्मुखी बनेंगे, आत्मभिमानी बनेंगे, चंचलता खत्म होगी, व्यक्त भाव खत्म होगा। अपने आप वो भी आपको देखकर मिलकर आत्मभिमानी बने। तो जो स्वरूप मेरा है और जो स्वरूप मैं अनुभव कराना चाहती हूँ वो ही निरंतर स्मृति में मुझे रखना। बाबा कहते ना कि दूर से अंधेरे में कोई व्हीकल आता है, मोटर कार आती है, तो वो दो फोकस की लाइट ही देखने में आती। वो मोटर उस लाइट में छिप जाती, वो नहीं दिखते, नजदीक आने के बाद पता चलता है, क्योंकि फोकसिंग इतना पावरफुल है कि वो व्हीकल की बॉडी छिप जाती। सेम बाबा कहते हैं तुम्हारी अपनी आत्म स्थिति इतनी स्मृति पावरफुल हो कि ये देखने में आते हुए भी ना दिखाई दे, माना उसका प्रभाव ही ना पड़े। तो एक तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है और दूसरा बाबा ने कहा है निराकार की याद से निराकारी बन सकते। निराकार को निराकारी सजनी चाहिए। बाबा की मुरली में साकार मुरली में ये महावाक्य आते, इसलिए भक्ति में भल देवात्माओं को याद किया, धर्मात्माओं को याद किया, महात्माओं को याद किया, कोई देह संबंधों को याद नहीं किया। देवात्मा धर्मात्मा महात्माओं को याद किया पर फिर भी आत्मभिमानी क्यों नहीं बन सके, क्योंकि है तो वो भी देहधारी ना। तो देहधारी की याद देहभान में लाने वाली, फिर वो देहधारी योगी है, ज्ञानी है, पवित्र है, महात्मा है या कोई भी है, पर देहधारी की याद देहभान में लाने वाली। इसलिए क्यों बाबा एक निराकार की ही महिमा करते हैं, क्योंकि तब हम निराकारी स्थिति के एहसास में ज्यादा रह सके। अब इस हिसाब से आप देखिए हमारी बुद्धि में एक है निमित्त कार्य से याद करना और ये जो है कि याद आना है ना। जब हम कोई देहधारी से अटैच होते हैं और वो जो एक इंटरनल बुद्धि का आकर्षण हो जाता या लिंक जुड़ जाता वो तुरंत देहभान में हमें लाती। तब बाबा मुरली में कहते हैं ना कि वो परी कोई देह अभिमानी को इंद्र सभा में ले आई तो बांस फैल गई, देहभान की बदबू, क्योंकि पवित्र ब्राह्मण भाई बहनों की सभा में कोई भी ऐसा आता है तो तुरंत पता चल जाता है। तो वो दोनों पत्थर हो गए, श्रापित हो गए। वो श्रापित होना क्या है, पत्थर होना क्या है कि आप आत्माभिमानी बन ही नहीं सके। बाबा की याद आपको टिकेगी ही नहीं, ये इतनी सूक्ष्म चीज है कि कोई भी देहधारी से थोड़ा भी खास संबंध बना आप देहभान में आ जाएंगे और डायरेक्ट प्रभाव योग टूट जाएगा। योग में दोनों याद आते रहेंगे, बुद्धि भ्रष्ट, आत्मा पत्थर। ये है पत्थर बनना, क्योंकि भगवान से ही डिस्कनेक्ट हो जाते। इसलिए जब खुद के ही नाम रूप को भूलना है तो दूसरों के नाम रूप को याद करने का तो सवाल ही नहीं है। आप सेवा करते रहे, ज्ञान सुनाते रहेंगे, पर आप योगी नहीं बन सकेंगे। आपके द्वारा कईयों का जीवन भी बन जाएगा, वो आत्मा जाग जाएगी, पर मेरी अवस्था नहीं बनेगी। इसलिए जब खुद के ही नाम रूप को भूलना है तो मन बुद्धि से औरों के नाम रूप को याद करना या कोई देह को मानसिक रूप से भी भोगना ये बिल्कुल योग से अपोजिट बातें। जहां तक निराकारी स्थिति बनाने का लक्ष्य, और वो स्थिति ही विकार को जीरो कर सकती है और कोई इलाज नहीं। इसलिए बाबा ने फर्स्ट हमें कहा निराकारी तो निर्विकारी, क्योंकि विकार का बीज देहभान है। और हमारा लक्ष्य है, इसलिए देखो शुरुआत कितनी ऊंची बाबा ने कराई, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है और हमारी मंजिल संपूर्ण निर्विकारी बनना है। देवता की महिमा क्या है, हम कहते हैं ना मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हम कर रहे, और देवता बनना माना क्या बनना है, हरेक को स्पष्ट है ना कि देवता बनना माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन। यह हर आत्मा को बाबा ने लक्ष्य दिया। बाबा के संगम युग में कोई अंतर नहीं है, वो समर्पित है, मधुबन निवासी है, सेंटर वासी है, घर में रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, हर किसी बहने हैं, भाई है, हरेक को एक ही लक्ष्य बाबा ने दिया है। और बाबा ने हमें कहा है हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार है। ये नहीं है कि समर्पित ही होंगे, नहीं, ये नहीं कहा है मधुबन निवासी, नहीं, हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार है। और हमारे सामने बाबा मम्मा वो एग्जाम्पल है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक बूढ़ा, एक जवान, एक धनवान, एक गरीब, एक परिवार वाला निमित्त जिम्मेवार और एक साथी सहयोगी, पर दोनों ने अपना लक्ष्य सिद्ध करके बताया। इसलिए कहीं भी हम रहे, मधुबन में रहे, सेंटर में रहे, घर में रहे, मुख्य बात है लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने जिगरी निर्णय किया है कि मुझे बनना है, भल शारीरिक बीमारियां हैं, भल आर्थिक मुसीबतें हैं, भल पारिवारिक टकराव है, लौकिक में अलौकिक में, ये अंत का समय है, हिसाब किताब चुकाने का समय है, सब सुविधाएं हो और फिर संपूर्ण बनने की बात, वो तो ड्रामा में होना ही नहीं है। भगवान सतयुग में नहीं आता है, कलयुग अंत में आता है। इसलिए बातें तो रहनी ही है, पर उसको ज्यादा माइंड नहीं करना है, ज्यादा सोच सोच के उसकी प्रभाव में मुझे नहीं आना है। ठीक है, तकलीफें हैं, हर किसी को है, किसको नहीं है, पर मेरी लगन मुझे इतनी ऊंची रखनी है कि ये बातें प्रभाव न डाल, कुछ भी हो मुझे बनना है। घड़ी घड़ी बाबा के आगे, निमित बहनों के आगे रोना रोना नहीं है, वो बिना ज्ञान भक्ति में इंद्रिय जीत बनने की मेहनत कर सकते हैं, बिना ज्ञान इतना आधा कल्प भक्ति कर सकते हैं, और हमें संपूर्ण ज्ञान, प्रैक्टिकल में हमने अव्यक्त पालना ली है, हम ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। हम यही सोचते रहेंगे कि ये है वो है, ये संसार की वास्तविकता है जो हमें फेस करनी है। ईश्वरीय परिवार की भी जो बातें हैं वो वास्तविक है। जब तक मनुष्यात्मा की स्थिति में है ये बातें रहेगी, फरिश्ते बनेंगे खत्म हो जाएगी, योगी बनेंगे खत्म हो जाएगी। ये छोटी मोटी बातें, इच्छाएं, अपेक्षाएं हमें मनुष्य बना देते, हमें योगी बनना है। हम यहां आत्माओं से लेने नहीं आए, हम भगवान से लेने आए। अब दुनियावी इच्छाएं नहीं है, पर यहां हमारी ईश्वरीय परिवार में, ईश्वरीय जीवन में, सेवा में निमित्त आत्माओं से, हमें आत्माओं से कोई पाने की इच्छाएं क्यों? अगर स्थिति बनानी है तो हमें ऊपर उठना ही होगा इन बातों से। और जब आप उस ऊंची अवस्था के सुख और आनंद में अनुभवी बनेंगे, फिर इन चीजों का कोई महत्व नहीं रहे। क्योंकि सही सुख, सही अचीवमेंट आप करने लगेंगे, फिर वो बाह्य बातें खींचेगी नहीं। निराकारी बनना है, खुद अनामी बनना है, खुद के नाम रूप को भूलना है। दूसरों के नाम रूप में तो बात ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते मुरली में बाबा कहते हैं, भले खाओ पियो घूमो फिरो, खुद को आत्मा समझो। जो खुद को आत्मा समझेगा वो अपने आप संयम में आ जाएगा कि मुझे किस हद तक खाना है, घूमना है, फिरना है, जो मैं आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर सकूं उतना ही मुझे खाना पीना घूमना फिरना है। न कि इतना खाना पीना घूमना फिरना है कि स्थिति का ठिकाना ही ना रहे। वो विवेक तो हमें चलाना है ना। मुझे ये तपस्या की मूल चीज डिटैचमेंट है, न्यारा बनना, देहभान से न्यारा, इंद्रिय रसों से न्यारा, संबंधों में। इसलिए बाबा कहता है सबसे न्यारा। सिर्फ सुबह शाम अभ्यास करें तब योगी, और सारा दिन कुछ नहीं, ऐसे नहीं। सुबह शाम विशेष अभ्यास इसलिए हम करते हैं ताकि सारा दिन हम कर्मयोगी बन सके। हमें ये महसूस हो कि मैं निरंतर ऊपर जुड़ी हुई हूं। हम तो आपस में ही कई बार गुम हो जाते हैं, हम एक दो में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाबा भूल जाता, वो बुद्धि का ऊपर कनेक्शन भूल जाता है। ये तो बाबा ने रिप्लेस किया था कि भाई लौकिक 63 जन्मों से संबंधों में रही हुई आत्मा एक धक से तो न्यारी नहीं होगी, तो बाबा ने रिप्लेस किया कि वो अज्ञानी नहीं, ये ज्ञानी परिवार। पर हमें इसमें अटैच नहीं हो जाना है। निराकारी स्थिति पाने के लिए हमें वो लिमिट याद रखनी है कि कहां तक हमें एक दो के संबंध में आना है। और इसलिए हर मुलाकात को, जिससे भी आप दिन भर में मिलते हैं, परिवार में, नौकरी में, सेंटर में, रास्ते चलते, जिस किसी से भी मिलते हैं, हमें अपनी हर मुलाकात को स्पिरिचुअलाइज्ड करना है, रूहानी बनाना है, अलौकिक बनाना है। आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि ही ये है, रूहानी दृष्टि, देहभान से न्यारे, निरंतर स्मृति स्वरूप, लगे ये योगी आत्मा। अभी तक योग के समय, मुरली के समय, आत्मभिमानी होकर बैठने का अभ्यास ही नहीं है। देखिए, हम एक दो को आत्मभिमानी दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे। कहां अनबन, कहां मनमुटाव, कहां संस्कार की बात। हम आत्मभिमानी दृष्टि से बाबा के महावाक्य रोज कहां सुन पाते हैं। क्योंकि हम ऊपर नहीं उठे, हम वही साधारणता में हैं, इसलिए ऐसा वैसा कैसा, ये इन बातों में ही बुद्धि है। हम एक दो में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, न्यारा पर। तो मुझे आत्मा को विकार का कोई अंश न रहे, ऐसा पूर्ण शुद्ध संपूर्ण पावन पूरा सतो प्रधान जो बनना है, वो तो तभी बन सकेगा। भट्टी में स्वनिरीक्षण आपने किया होगा, कर्म में कंट्रोल आ गया है, उसमें भी आप देखो, हर एक अपना अपना देखो, मनसा क्या है, हमारा आपसी व्यवहार क्या है, परिवार में हम कैसे चलते हैं। किसी भी कारण से, किसी भी आत्मा के कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण, अवस्था तो नीचे नहीं लाना है ना, परिस्थिति तो आएंगी, आत्माएं तो टेढ़ी होंगी, नंबरवार होंगी। मुझे बनना है तो कोई भी कारण से मुझे नीची स्थिति में नहीं आना। तो देखो कहां हम अटके हुए हैं, अंदर कौन सा विकार अभी भी है। ये भी हम सब जानते हैं, अभी ही बन सकते हैं, बाबा ही बना सकता है, और कोई जन्म में और कोई युग में ये पुरुषार्थ हम नहीं कर सकेंगे। हम अल्पकाल की प्राप्तियों के आकर्षण में न चले जाएं कि मैं चार पाठशाला चला रहा हूं, मैं चार सेंटर खोले हैं मैंने, मैं भाषण करता हूँ, मैं मुख्य हूँ, मैं अनन्य हूँ, मैं पुराना हूँ, कुछ भी है, हम इसके लिए नहीं आए। हमारी रियल अचीवमेंट ये स्थिति है, अंदर की शुद्धि है। बाबा ने कहा ना, अंश होगा जिस विकार का अंश होगा वो विकार वाली आत्माएं आपके तरफ आकर्षित होगी, वैसी इच्छाएं वाली आत्माएं आपके तरफ आकर्षित होगी। इसलिए मुझे पूर्ण शुद्ध बनना है और अपने अंदर का देखना ये तो खुद ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। कर्म के स्तर पर, बिहेवियर लेवल पर हम पवित्र हैं, योगी हैं, सेवाधारी हैं, ज्ञानी हैं। ये बहुत अच्छी हमारी अचीवमेंट है, दुनिया में लोग नहीं कर सकते हैं, हम सबने किया है। ये बहुत ऊंची धारणा है, हमने अपना तन मन धन इसी कार्य में लगाया है, मन वचन कर्म इसमें लगाया है। पर बाबा सुप्रीम है तो मंजिल भी तो ऊंची बताते हैं। और ये मौका है, स्वयं भगवान हमारी मदद में है, ड्रामा फेवर में है, क्योंकि ड्रामा अब सत्युग तरफ मुड़ रहा है। तो बाबा एंड ड्रामा दोनों फेवर में, बस मुझे अपना विल, इच्छा, लक्ष्य पक्का करना है। और ये सब कुछ बनते जाने के साथ साथ जो रियल में वो बनेगा निराकारी, निर्विकारी बनता जाएगा, वो निरंकारी ही होगा, उसको अभिमान नहीं आएगा। उनको याद है बाबा बना रहा है। हम देखते हैं प्रैक्टिकल, हमारे जो भी बड़े हैं अभिमान नहीं, बाबा कहते हैं ना सत्य ज्ञानी अभिमानी नहीं हो सकता है, मिथ्या ज्ञानी अभिमानी बन जाता है। सत्य ज्ञानी सही अर्थ में नम्र होता है, क्योंकि हमें याद है कि बाबा मुझे बना रहा है। आज भी बाबा ने कहा अंतकाल जो सिमरे, तो अंदर अंदर हम सब चाहते हैं ना कि बस बाबा मुझे अंत में याद रहे और कोई याद ना आए। तो मुझे मेरा लंगर चारों ओर से उठ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ना कि जब चीज पककर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देते, फल पक जाता है वो अपने आप गिर जाता है। परिपक्व स्थिति बनेगी, अपने आप देहभान खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं कोई माया नहीं रहेगी, इसी शरीर में माया जीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसी को बाबा कहते हैं कर्मातीत, कि विकर्म का कोई हिसाब न रहे।